प्रेमा, क्या बोर जिंदगी है।
बोर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। आदमी को जीवन में कुछ तो मजेदार करना चाहिए। अरे कुछ पार्टी शार्टी करते हैं, मुझे तो कुछ मस्ती वस्ती करने का मन हो रहा है।
मस्ती वस्ती?
हुँ?
बहुत खूब, आज तो हुजूर बड़े रंगीन मिजाज हो रहे हैं। क्या खास है?
अरे कुछ खास नहीं है, मगर जिंदगी में कुछ रंगीनियां भी तो होनी चाहिए, नहीं?
तो अभी जरा कार्यक्रम शुरू करें।
ओ, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था।
तभी तो कहती हूँ, ये फन कभी कभी भारी पड़ जाता है।
ये लो, हो गए शुरू। दोस्तों, मैं हूँ जगत चंदौली।
और मेरा नाम है प्रेमा नेगी।
नई दिशा रेडियो प्रोग्राम के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है।
दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्त जगत ने बताया, प्रोग्राम का नाम है नई दिशा, और इसके तहत हम आपको सुनाएंगे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह,
साथ ही और भी बहुत कुछ, जैसे हमारा जानकारियों का सेगमेंट जानो अनजाने और क्विज सेगमेंट भेजा फ्राई।
और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपका जीवन के उन रंगों से परिचय करवाएंगे जो कि जीवन की भागदौड़ में कई बार फीके से पड़ जाते हैं। और जीवन के इन महत्वपूर्ण रंगों को बरकरार रखने के लिए हम लाए हैं ये प्रोग्राम, ताकि जगत जैसे हमारे दोस्त मौज मस्ती के चक्कर में जरूरी बातें ना भूल जाएं।
अब ऐसा भी नहीं है प्रेमा, मैं भूला नहीं था, बस वो क्या है ना कि मूड जरा कुछ और ही बन गया था।
तो दोस्तों, गलती तो हम सभी करते हैं, चाहे उसे हम कोई भी नाम दे दें। इसी मस्ती वस्ती के फेर में कई बार हम वो सावधानी बरतना भूल जाते हैं जो हमें HIV संक्रमण से बचा सकती है।
बिल्कुल सही कह रही हो प्रेमा, इसीलिए तो है हमारा अगला सेगमेंट जानो अनजाने।
जगत, तुम्हें पता है कि आज की तारीख में UNAIDS के मुताबिक पूरे विश्व में 3,35,00,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं, और एशिया में ये संख्या है 48,00,000।
और हमारे भारत में?
भारत में ये संख्या 25,00,000 है। मगर जरूरी बात ये नहीं कि HIV ग्रसित लोगों की संख्या कितनी है, जरूरी बात ये है कि लोग HIV के बारे में जानते कितना है।
अब तुम सवाल पूछोगी?
क्यों, तुम्हें डर है कि HIV की पूरी जानकारी तुम्हें भी नहीं है?
ऐसा मैंने कब कहा प्रेमा?
तो बताओ, HIV कैसे फैलता है?
असुरक्षित यौन संबंध से।
और असुरक्षित मतलब?
मतलब हर वो संभोग जब कंडोम का सही उपयोग नहीं किया गया हो तो वो असुरक्षित हुआ।
वेरी गुड। और कैसे HIV फैलता है?
दूषित सुइयों से, यानी किसी की इस्तेमाल की हुई सुइयों का उपयोग अगर हम करें, चाहे इंजेक्शन के लिए या ड्रग्स लेने के दौरान। जो लोग ड्रग्स सुइयों से लेते हैं वो लोग अधिकतर एक ही सुई कई लोगों के शरीर में लगाते हैं।
सही कहा, इंजेक्शन लेते समय जरूरी है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली डिस्पोजेबल सीरिंज और सुइयों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर इंजेक्शन के सामान को 20 मिनट के लिए उबाला जाए।
और प्रेमा, दूषित खून चढ़ाने से भी HIV फैलता है।
बिल्कुल सही, अगर किसी कारण किसी को खून की आवश्यकता हो तो ब्लड बैंक से HIV के लिए जांचा हुआ खून ही इस्तेमाल करें।
और क्या और भी तरीके हैं?
हाँ, यदि गर्भवती माँ HIV ग्रसित है तो उसके बच्चे को HIV होने की संभावना भी होती है। बस HIV इन्हीं चार तरीकों से फैलता है।
अब चारों तरीके याद रखूंगा।
तो तुम्हारा भेजा तो फ्राई हो गया, अब जरा हमारे श्रोताओं का भी भेजा फ्राई कर दें।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, और बुलाते हैं अपने क्विज मास्टर को।
तो भेजा फ्राई में आज का सवाल, HIV क्या है? एक बार फिर से सुनिए, HIV क्या है? और आपके ऑप्शन हैं ए, एक बीमारी, बी, छुआछूत, सी, एक वायरस या विषाणु, डी, कोल्ड ड्रिंक। एक बार अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए, एक बीमारी, बी, छुआछूत, सी, एक वायरस या विषाणु, डी, कोल्ड ड्रिंक।
थैंक्स क्विज मास्टर जी। लिसनर्स, आप अपना सही जवाब हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9717678223। जी हाँ, 9717678223। जवाब भेजने के लिए लिखें ND1 भेजा फ्राई, उसके बाद स्पेस दें और फिर लिखें आपका ऑप्शन। याद रहे, सिर्फ SMS करें। सही जवाब भेजने वालों को मिलेगा एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप। तो लग जाइए अपने मोबाइल पर SMS करने में, क्योंकि ये सबसे स्मार्ट जवाब देने वालों को दिला सकता है एक स्मार्ट भेजा फ्राई कैप, और क्या पता वो शख्स आप ही हो।
तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारी आज की खास मेहमान से मिलने का, हमारे सेगमेंट आमने सामने में। और और आज की हमारी खास मेहमान है हिमानी सेठी, जो कि पिछले काफी सालों से HIV और माइग्रेशन यानी पलायन के मुद्दों पर काम कर रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमानी जी हमारे स्टूडियो में।
थैंक यू प्रेमा।
हिमानी जी, ऐसा कहा जाता है कि HIV और पलायन के बीच में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा क्यों कहा जाता है?
HIV संक्रमण और पलायन के जोड़ को समझने के लिए हमें पलायन चक्र को समझना जरूरी है। बात शुरू करते हैं गांवों की। अक्सर यह देखा गया है कि गांवों में लोगों के पास HIV संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी की कमी होती है, और इस जानकारी की कमी के अभाव में जब प्रवासी शहरों में आते हैं तो वे यह नहीं जानते कि वह किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। ये भी पाया गया है कि ज्यादातर प्रवासी शहरों में अकेले रहते हैं, परिवार उनके गांव में होते हैं, परिवार की कमी रहती है, परिवार का नियंत्रण नहीं रहता है। प्रवासियों के जीवन में पियर्स या दोस्त जो उनके साथ रहते हैं और काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। यह प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बुरे प्रभाव के रहते ये देखा गया है कि बहुत से प्रवासी यौन कर्मियों के पास जाते हैं या नशा करते हैं, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि जानकारी के अभाव में प्रवासी असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हैं, कॉन्डम का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें HIV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
तो हिमानी जी, ये बताइए कि क्या सभी प्रवासियों को इस बात का खतरा रहता है?
नहीं, सारे प्रवासी जोखिम भरे व्यवहार नहीं करते हैं और सभी प्रवासियों को इसका खतरा नहीं है। बात है जानकारी, आधी अधूरी जानकारी की या जानकारी की कमी की, जिसकी वजह से HIV संक्रमण का खतरा बना रहता है।
हिमानी जी, जैसा आपने कहा कि इन जानकारियों का प्रवासियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो क्या ये जानकारियां पहुंच पाती है प्रवासियों तक?
प्रवासियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अधिकतर देखा गया है कि जो प्रवासी हैं वो दिहाड़ी के काम करते हैं, जैसे निर्माण का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, ढाबों का काम है, जिसकी वजह से वे शहर में भी एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, तो प्रवासियों के साथ वो एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो प्रवासियों के साथ काम कर रही हैं और उन तक पहुंच रही हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। दिल्ली में प्रवासियों के साथ काफी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, जहां पे वो ड्रॉप इन सेंटर्स बनाती हैं। ये ड्रॉप इन सेंटर्स प्रवासियों के लिए है, जहां पे वह जहां उन्हें परामर्श, गुप्त रोगों का इलाज, मनोरंजन के साधन, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि माइग्रेंट्स को एक जगह इकट्ठा करा जा सके, जहां पे वह अपना खाली समय व्यतीत कर सके। एक और तरीका भी है प्रवासियों तक HIV संबंधित जानकारी पहुंचाने का, और यह है प्रवासियों के संगठन और समूह। हम देखते हैं कि गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो प्रवासियों के साथ काम कर रही हैं, सरकार भी टारगेटेड इंटरवेंशंस नाम के कार्यक्रम चला रही हैं।
हिमानी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की बनती है। आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी, बहुत सारी गलतफहमियों को दूर किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी इससे काफी फायदा पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आई।
धन्यवाद प्रेमा की आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नई दिशा कार्यक्रम का पहला एपिसोड। काफी देर से प्रेमा और मैं अपनी ही बातें कर रहे हैं, इसलिए अब समय है आपकी बात का,
यानी आपकी भेजी हुई चिट्ठियां पढ़ने का। दोस्तों, कार्यक्रम के इस हिस्से में हम HIV से जुड़े हुए उन सवालों को सामने लाएंगे जो जरूरी हैं, लेकिन अक्सर पूछे नहीं जाते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो, कुछ प्रतिक्रिया या कोई अनुभव जो आप हमसे बांटना चाहें, तो जल्दी से लिख भेजें। अगर आप अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहते हो तो हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे।
तो आइए देखते हैं इस सप्ताह हम किन पत्रों को शामिल कर रहे हैं हमारे सेगमेंट आपकी बात में।
जगत, सबसे पहला हमारे पास जो खत आया है वो आया है नई दिल्ली से। इन्होंने जानना चाहा है कि किसी व्यक्ति को HIV है तो वो अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें। दूसरा सवाल इन्होंने लिखा है कि HIV हो जाए तो क्या किया जाए, किस प्रकार की जिंदगी बिताई जाए, घर से अलग या घर वालों के साथ। तो दोस्त, अगर खून की जांच के बाद आपको ये पता चल गया है कि आपको HIV संक्रमण है, तो सबसे पहले घर जाकर आप अपनी पत्नी से जरूर बात करें। पति पत्नी का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। और यौन संबंध स्थापित करते वक्त अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगे तो HIV संक्रमण की संभावना को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। रही बात घर से अलग या घर वालों के साथ रहने की, तो इसमें घर से अलग होने की तो कोई बात ही नहीं आती है। आप अपने परिवार वालों के साथ रहें, क्योंकि इस हालत में आपका परिवार ही आपको बल प्रदान करेगा। दोनों हालात में आप हर बार किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता के पास जरूर जाएं और उनसे सही जानकारी लें। ये जानकारी आपको हर सरकारी अस्पताल में ICT सेंटर के तहत मुफ्त उपलब्ध है।
प्रेमा, अगला खत भी हमें दिल्ली से ही मिला है। इनके दो सवाल हैं। इनका पहला सवाल है, कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को HIV/AIDS है? देखिए, किसी को देखकर या ऊपरी जांच से ही HIV संक्रमण का पता नहीं चल सकता है। सिर्फ खून की जांच के द्वारा ही HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। और इनका अगला सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को HIV/AIDS है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार ही करें, क्योंकि HIV संक्रमण केवल 4 कारणों से ही फैलता है, और ये तो आज आपने हमारे कार्यक्रम में सुन ही लिया है। HIV/AIDS से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए आप हमारे आने वाले कार्यक्रम लगातार यूं ही सुनते रहें।
तो दोस्तों, आपके HIV से जुड़े सवाल हमें खतों के जरिए जरूर भेजें। जो कभी किसी से ना पूछ पाए वो हमें लिखें। आपका नाम बिना बताए हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपकी बात इस प्रोग्राम में रखेंगे।
हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव, पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
हमें बहुत ही बेसब्री से आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। तो जगत, अब क्या इरादा है?
मेरा इरादा तो हमेशा नेक ही होता है प्रेमा। वैसे हमारा साप्ताहिक धारावाहिक जीवन की राह सुने तो कैसा रहे?
तो सुनते हैं जीवन की राह।
रबीता, चल उठ जा बेटा।
माँ सोने दो ना।
सूरज सर पे चढ़ाया है और तू अब तक सो रही है। स्कूल नहीं जाना है क्या?
नहीं, मुझे नहीं जाना।
जल्दी से उठकर तैयार हो और दादी के लिए चाय बना। उधर सुमन भी तेरा इंतजार कर रही होगी।
करने दो।
आजकल के ये बच्चे सुबह देर तक सोने में न जाने कैसा मजा आता है इन्हें। हमारे समय में तो सुबह देर से उठने पर मार पड़ती थी, मार।
अरे बेटा उठ जा, देख दादी पुकार रही है।
इसी लाड़ प्यार ने तो बिगाड़ रखा है। अभी से ये हाल है, ससुराल जाकर तो नाक ही कटाएगी।
दादी माँ, अभी से क्यों ससुराल भेज रही हो?
सुबह से तेरे हाथ की बनी चाय का इंतजार कर रही हूँ। सच, कभी कभी तो लगता है चाय से पहले जान ही निकल जाएगी।
हम आपको ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे दादी माँ। अभी तो आपको मेरे हाथ की बनी ढेर चाय पीनी है।
अरे जल्दी कर, नहीं तो देर हो जाएगी।
बना तो रही हूँ माँ। लो, बन भी गई। अच्छा, मैं तैयार होती हूँ, तुम दादी को चाय दे देना।
अरे तू अपने हाथों से ही दे दे, अच्छा लगेगा उन्हें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए।
अच्छा माँ। दादी माँ, लीजिए पहले मेरे हाथ की चाय पीजिए और बताइए कि कैसी बनी है।
ला ला, दे चाय दे।
खास आपकी पसंद की बनाई है मैंने।
चाय तो अच्छी बनाती है रबीता, पर सुबह सुबह मेरा मन खराब करना अच्छा लगता है तुम्हें। बोल, क्यों सताती है मुझ बूढ़ी आत्मा को?
ताकि अच्छी चाय पिलाकर आपका मन खुश कर सकूं, नहीं तो मेरी अच्छी चाय का मोल ही क्या रह जाएगा, है ना माँ?
अब मुझे इस बीच में मत घसीट, बेकार में सास बहू का झमेला हो जाएगा। इसे तुम दादी पोती का ही मामला रहने दो तो ठीक है।
शैतान की अम्मा है ये मत सोच कि अच्छी चाय पिलाकर मुझ बूढ़ी को फुसला लिया। आने दे मेरे बेटे सूरज को, शिकायत जरूर करूंगी तेरी, कहे देती हूँ।
ठीक है दादी माँ, कर देना। मैं भी देखती हूँ, आपके बेटे हैं तो क्या, मैं भी उनकी बेटी हूँ, वो भी अकेली दुलारी बेटी, ऐसी वैसी नहीं हूँ।
ओफो, कहाँ रह गई रबिता? लगता है आज फिर देर होगी स्कूल के लिए।
अरे मोहित।
हाँ।
वो देख, मास्टर की बेटी खड़ी है।
शंकर चुप। अबे सुन लेगी तो वो क्या सोचेगी मेरा मतलब कि हमारे बारे में?
क्यों 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 क्यों, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? कुछ खास बात है क्या?
बात क्या रहेगी भाई, हमारे मास्टर की बेटी है।
अच्छा अच्छा।
और वो भी हमारे स्कूल के सबसे अच्छे मास्टर की। अगर शिकायत कर देगी तो
कर दे, क्या फर्क पड़ता है?
तुम्हें नहीं पड़ता है, पर मुझे पड़ता है।
अच्छा अच्छा तुम्हें पड़ता है।
जरा हम भी जाने कितना और क्यों फर्क पड़ता है।
ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ रुको मत, आगे बढ़ते रहो।
वो हमारी ही तरफ देख रही है यार।
अच्छा बाबा अच्छा, चलो भाई सुरेंद्र आगे बढ़ते हैं भाई, हमारे सत्य हरिश्चंद्र को बुरा जो लग रहा है।
सुमन सुमन क्या बात है, तो इस तरह आंखें भर भर के क्या देख रही है, और ये लोग इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे थे?
मुझे क्या पता, कुछ बात कर रहे होंगे।
सुमन वैसे भी मुझे ये शंकर ना कुछ ठीक नहीं लगता, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है, और तो और टीचर तक का मजाक उड़ाता रहता है क्लास में। बाप बीडीओ है ना, तो खुद को भी बीडीओ समझता है।
तू तो छोटी छोटी बात को बड़ा बना देती है। अरे लड़कों की तो आदत ही होती है बिना बात के हंसते रहने की। हंसते हैं तो हंसने दे, इसमें हमें क्या। चल अब देर मत कर, क्लास शुरू हो जाएगी।
हाँ चल चल जल्दी चलते हैं।
धनवंती, ओ धनवंती, अरे बहन घर में हो क्या?
आजा लक्ष्मी, अंदर आजा।
क्यों आज चलना नहीं है क्या?
बस चलती हूँ, जरा गाय को चारा डाल दूँ, तू बस बैठ, मैं बस अभी आई।
कौन है बहू, कौन आया है?
कोई नहीं माँ जी, लक्ष्मी है।
माँ जी प्रणाम।
खुश रहो, और बता जयपाल के क्या हाल हैं? कोई खोज खबर है क्या?
माँ जी 2 महीने पहले बात हुई थी, तब ठीक ही थे।
1.5-2 साल तो हो गए होंगे उसे शहर से आए हुए, इस बार त्योहार में आ रहा है या नहीं?
बोला तो है आने के लिए, पर पता नहीं आते हैं या नहीं, कहते हैं आने जाने में बेकार का खर्च होता है।
लो ये भी कोई बात हुई भला, घर आने के लिए भी कोई पैसे की सोचता है। ठहर, मैं सूरज को बोलती हूँ कि इस बार उसे लेके ही आएगा।
जैसी आपकी मर्जी माँ जी, मैं तो यहाँ अकेले पिस कर रह गई हूँ, 1.5 साल से घर नहीं आए। पहले कभी कभार कुछ पैसे भेज दिया करते थे, पिछले 3 महीनों से तो पैसा भी नहीं आया। घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका भी ख्याल नहीं, 3-3 बच्चे हैं, किस किस को देखूं, घर कैसे चलाऊं समझ में नहीं आता।
रोते नहीं बेटी, रोते नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भगवान सबका भला करेंगे।
अरे इसे क्या हुआ, क्या हुआ लक्ष्मी?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ जी ने उनकी बात छेड़ दी ना तो मन भर आया।
अरे पगली, मैं आज शाम उनसे बात करूंगी तो उसके बारे में भी पूछ लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। चल जंगल चलते हैं, देर हो रही है और जल्दी वापस भी तो लौटना है।
तो बच्चों ये बताओ कि अगर बी ए का भांजा है, डी सी की बेटी है, जबकि बी और डी दोनों भाई बहन हैं, और एफ ए व सी की माँ है, तो ए और डी का आपस में क्या संबंध है? चलिए जल्दी से हिसाब लाकर बताइए।
सुरेंद्र अपना मास्टर भी क्या हिसाब पढ़ाता है, है? देख अगर ये पता भी चल जाए कि कौन किसका क्या है तो इससे किसका क्या भला होने वाला है। अरे झूठी माथा पच्ची कराता रहता है बस।
ठीक कह रहे हो शंकर, अरे मुझे तो इसका जवाब पता है पर बताऊंगा नहीं।
तुम्हें इसका जवाब पता है? भाई वाह वाह क्या बात है, तुम तो बहुत तेज निकले यार, मैं तो तुम्हें बेकार ही उल्लू समझता था।
देखो ए डी का आपस में जो भी लगे मेरा तो कुछ नहीं लगता ना, फिर मैं टेंशन क्यों लूं?
सही सही, बिल्कुल सही कहा।
अरे 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 क्या बात है, आप लोग सोचने के बजाय हंस रहे हैं।
कुछ नहीं सर, वो सोचते सोचते हंसी आ गई थी, बहुत मजेदार सवाल है ना सर।
चलिए सोचिए, ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा मोहित कुछ समझ में आया?
हाँ हाँ सर सोच रहा हूँ।
सर सर ए डी का मामा है।
बिल्कुल सही रविता, शाबाश। चलो फिर एक और सवाल पूछता हूँ।
प्रिंसिपल सर आ गए।
ये क्या हंगामा मचा रखा है, ये क्लास है या बाजार? राजन जी आपकी क्लास की वजह से आसपास के सारे क्लास डिस्टर्ब हो रहे हैं, यही अनुशासन है आपके क्लास का?
प्रिंसिपल सर मैं जरा बच्चों को
गणित पढ़ा रहे थे तो हंगामा किस बात का मचा रखा है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके अलावा कोई और गणित पढ़ाता ही नहीं, हमने भी गणित पढ़ा है।
सर वो बच्चे हैं थोड़े उत्साहित हो जाते हैं।
आप क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आए, जो सफाई देनी हो वहीं आकर दे, और आप लोग अनुशासन में रहना सीखिए वरना स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा।
दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट का, और ये है क्या किया जाए।
दोस्तों कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जब क्या किया जाए पता ही नहीं चलता, या हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि इसमें कर ही क्या सकते हैं।
इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे ऐसी ही परिस्थितियों की और जानेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए।
आपके परिवार का कोई सदस्य पलायन करके शहर गया है लेकिन परिवार से संपर्क नहीं रखता, तो आप क्या करेंगे?
पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि संपर्क किस वजह से नहीं हो पा रहा है। जहां वो नौकरी कर रहा है, जिस शहर में रहता है, वहां जाएंगे, वहां उसको ढूंढेंगे।
हम उनको फ़ोन द्वारा कांटेक्ट करेंगे, अगर वो तभी भी नहीं मिलते तो अखबारों में इश्तिहार देके उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
थाना में रिपोर्ट करेंगे, अखबारों में लिखेंगे, टीवी में आएगा, ये कर सकते।
मैं शहर में जाऊंगा, अखबारों में सूचना दूंगा, पुलिस कंप्लेंट करूंगा या फिर अपने दूसरे मित्रों से बातचीत करके हो सके तो टेलीविजन पर और रेडियो पर भी खबरें दूंगा।
तो दोस्तों, कई विकल्प हैं, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ करना संभव है।
और चलते चलते आपको ये बता दें कि ये कार्यक्रम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ रुद्रप्रयाग और दिल्ली मुंबई के हमारे सामुदायिक संवाददाताओं के भी आभारी हैं।
तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के उस स्टेज पर जहां हमें लेनी है आपसे विदा, लेकिन हमें पत्र लिखना और SMS करना ना भूलिएगा।
अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, इसी वक्त मिलेंगे नई दिशा प्रोग्राम के अगले एपिसोड के साथ।
तो तब तक के लिए हमें विदा दें।
नमस्कार।